हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल इस स्वाध्याय में वेदांत शास्त्र श्रवण करते हैं और इसके माध्यम से जो संशय की भावना है वह तो लगभग निवृत्त हो गई। अब तो कोई संशय नहीं है। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांतानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावसानम्। श्रवण के द्वारा संपूर्ण वेदांतों को सुनने के बाद आपाततः जो हम लोगों को ये ज्ञान हुआ कि हम सच्चिदानंद के ही अंश हैं। अब इसमें जो संशय हो रहा था कि जैसे अनेक प्रकार के कर्मों का उपदेश दिया गया उसी प्रकार से आत्मा भी अनेक प्रकार के है क्या, मालूम पड़ गया आत्मा एक ही है, सब में एक समान है। इस संशय की निवृत्ति होती है श्रवण करने से। संशय भावना, असंभावना मनन के द्वारा युक्ति के द्वारा निवृत्त होती है। अब तीसरा जो है निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। ऐसे श्रवण मनन और निधिध्यासन श्रुति युक्ति और अनुभूति ये एक प्रक्रिया है, हमारे वेदांत की अपनी मर्यादा है। इसी से अब आगे जो तत्त्वमसी आदि महावाक्य हैं, षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंग क्या है ये आगे बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये कहा कि तीन प्रकार के जो प्रतिबंधक हैं ये आत्मज्ञान न होने में, इन तीनों प्रतिबंधकों को जब तक न हटा दिया जाए तब तक कार्य होने वाला नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति तो है लेकिन चंद्रकांत मणि को रख दो पास में तो अग्नि के दाहकत्व तो शक्ति क्षीण हो जाती है, वो जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चंद्रकांत मणि रूपी प्रतिबंधक है। वहां अग्नि तो है लेकिन मणि के प्रभाव से वह जला नहीं सकती। उसी प्रकार से शास्त्र आदि श्रवण भले ही कर लो लेकिन जब तक ये तीनों प्रतिबंधक बने हुए हैं, संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना, तब तक जो ज्ञान का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो सकता। एवं प्रतिबंधक त्रयस्य नाश अकरणे, पृष्ठ संख्या 44 में देखिए, यथा सर्वस्य दाहको अपि अग्नि मणि मंत्रादि प्रतिबंधकैहि प्रतिबद्ध सन एकम त्रिणम अपि दग्धुम न शक्नोति। एक भी तिनके को नहीं जला सकती वो अग्नि, मणि मंत्र आदि प्रतिबंधक के होते हुए। मंत्र के द्वारा अग्नि की शक्ति को प्रतिबद्ध कर दिया जाए अथवा मणि को रख करके अग्नि की दाहकत्व शक्ति को अवरुद्ध कर देवे तो वह अग्नि जैसे एक तिनके को नहीं जला सकती, ठीक उसी प्रकार एवं इसी प्रकार ज्ञानाग्नि अपि, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो कार्य होना चाहिए, प्रतिबंधक ही प्रतिबद्ध, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रतिबद्ध किसने किया तो संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना, यही उसके प्रतिबंधक हैं। इसलिए अज्ञान तत्कार्येषु, अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि चलो थोड़ा बहुत काम बन गया। यहां लिखा है समूल अज्ञान की निवृत्ति। ऊपर ऊपर से पेड़ को काटते रहो तो बार बार पनप जाता है, वैसे ही अज्ञान के कार्य को तो हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन अज्ञान नहीं हटता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान पूर्वक ही समूल अज्ञान की निवृत्ति होती है, कार्य समेत अज्ञान की निवृत्ति होना जरूरी है। तो जो ज्ञान का कार्य है अज्ञान को नष्ट करना, वह इन तीन प्रतिबंधकों को रहते हुए ज्ञान अपना कार्य नहीं कर पाता। पूर्वोक्त प्रकारेण अस्मिन् प्रतिबंधक त्रये अपि अपनीते सति सद्य एव अग्निस्त्रिणम् इव अयम् अपि अविद्याम् तत्कार्यम् सर्वम् अपि दग्धुम् शक्नोति। सद्यः एव अग्नि, जैसे अग्नि के सामने से चंद्रकांत मणि को हटा दो तो तुरंत वह तिनकियों को जला देती है, इव उसी के तरह अयम अपि, यह जो ज्ञान है अविद्या और तत्कार्यम, अविद्या और उसका जो कार्य है, सर्वम अपि, सबको दग्धुम शक्नोति, दग्ध करने में समर्थ होते हैं। अब किस प्रकार से वेदांत श्रवण करना चाहिए इसका एक क्रम बता रहे हैं, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। बहुत प्रसिद्ध है षडविध तात्पर्य निर्णायक लिंग, वेदांत तात्पर्य निर्णय उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम और उपसंहार एक हो गया, दोनों को मिला के एक होगा, अभ्यास दो, अपूर्वता तीन, फल चार, अर्थवाद पांच और उपपत्ति छह। उपपत्ति में ऐसे छोटा इकार होता है, लेकिन अर्थवाद और उपपत्ति दोनों को मिला दिया ना तो दो वचन हो गया, इसलिए बड़ा इकार कर दिया, अर्थवादोपपत्ति च, नहीं तो हो रहा चाहिए उपपत्ति, छोटा इकार। लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये उसका एक निर्णय करने के तरीका है, लिंग मतलब यहां क्रम है। यदि ये बातें जहां नहीं होगी वहां शास्त्र का अभिप्राय क्या है समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए आगे उदाहरण दे ही रहे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, अब मोटे मोटे तौर पर पहले समझ लीजिए, वेदांत शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय, वेदांत शास्त्र का प्रतिपादन करने के योग्य जो विषय है वह है आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में वर्णन करना। तो जहां से बात प्रारंभ हो वहीं पर बात की समाप्ति भी होनी चाहिए। आत्मा की चर्चा हो रही है और बात करते करते अनात्मा की तरफ चले जाए तो अभिप्राय नहीं निकलेगा, तात्पर्य बोध नहीं होगा। इसलिए लोक में जब हम लोग कोई बात शुरू नहीं करते तो आधे अधूरी बात करके छोड़ के चल देते हैं, और कई बार इतना बुरा लगता है, बोलते हैं अरे रूजा अभी मेरी बात पूरी, कहां जा रहे उठ करके, वो नहीं वो चूल्हा पे चाय रखी थी, देखा कहीं उबल के न गिर जाए, इसलिए आप लोग यहां जो बैठे हो ना, ये वास्तव में श्रवण करने का तरीका यही है। यहां पर भी यदि हम लोग दूसरे काम भी इसके साथ करेंगे तो उधर ध्यान रहेगा कि इधर ध्यान रहेगा, सब कुछ छोड़ के आपको इतना मालूम है कि अभी हमें श्रोता बन करके श्रवण करना है। और मैं भी जो वक्ता हूं अभी बोल रहा हूं, एक बात सुना दूं और मैं चला जाऊं, थोड़ा घूम के कहूंगा मैं आता हूं दोबारा फिर बता देता हूं, तो ये वक्ता का लक्षण भी नहीं हुआ। तो श्रोता और वक्ता जिस समय हम लोग बने हैं, जो विषय प्रारंभ हुआ उसको जब तक पूरा न करें तब तक वो श्रवण का रूप नहीं होगा। तो छांदों के उपनिषद में जहां आचार्य ने प्रारंभ किया वहीं पर उस बात को लाके समापन भी किया। तो उपक्रम का मतलब होता है प्रारंभ और उपसंहार का मतलब होता है समापन, जहां से प्रारंभ हो वहीं पर समापन हो। तो उपक्रम और उपसंहार ये एक लक्षण हुआ। अभ्यास, जो बात कही जा रही है और दृष्टांत भी देंगे, थोड़ी इधर उधर की भी बात होगी, विनोद की भी बात आ जाती है, यहां आप लोग हंसो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बोर हो जाओ ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे भी इस बात को हम समझ लें, इसके लिए चाहे कोई भी युक्ति दृष्टांत देना पड़े तो बहुत अच्छा हो जाता है। उससे भोजन करने में मुख्य तो रोटी चावल ही खाना होता है, साथ में चटनी अचार पापड़ सब ले लेते हैं, नहीं तो केवल पापड़ी क्यों नहीं खा लेते, केवल चटनी ही क्यों नहीं चाट लेते। खाना तो रोटी है, बुलाते भी लोगों को भाई रोटी खा लो, और केवल रोटी ही नहीं रखते, साथ में सब कुछ रख भी देते हैं। वैसे विचार तो चल रहा है कि लघु वासुदेव मरणम सुनना है, और इसमें जो विषय है यही हमको बोलना भी है, लेकिन थोड़ा इधर उधर के उदाहरण भी देने से बात और अच्छी लगती है। तो उपक्रमोपसंहार के बाद अभ्यास भी होना चाहिए, बीच बीच में जो विषय कही, जिस विषय की चर्चा हो रही है, तो वेदांत शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय का जहां से प्रारंभ हो वहीं पर समापन हो, एक लिंग। दूसरा जो है अभ्यास, बार बार उस बात को कहे, तो छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी को कम से कम 9 बार बोला गया है, तत्वमसी श्वेत केतु, तत्वमसी श्वेत केतु, ऐसा कह करके आचार्य याद दिला रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं बार बार। तो अभ्यास भी होना चाहिए, तब जाके तात्पर्य समझ में आता है। उपक्रमोपसंहारो और अभ्यास का आकार दोनों के मिलकर संधि हो गई तो बन गया उपक्रमोपसंहाराभ्यासु। यह उपक्रमोपसंहारो अभ्यास अपूर्वता, अभ्यासो अपूर्वता फलम। तो उपक्रमोपसंहार और अभ्यास दो हो गया। उपक्रम में छांदोग्य उपनिषद में यहां दिया है कि अत्र छांदोग्य षष्ठाध्याये सदैव सोम्ये दमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम्। हे सोम्य, जो यह तुम्हें दिखाई दे रहा है जगत, ये जगत पहले भी सदरूप में था, अर्थात ये जगत को जो हम असत्य बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं कि उपाधि के तरफ, अध्यास के तरफ तो सबका ध्यान जाता है, अधिष्ठान के तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं, इसलिए जगत को मिथ्या कह दिया जाता है। आप विचार कीजिए तो इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। इसलिए वेदांत परिभाषा में जहां लक्षण किया कि प्रमाता की सत्ता, प्रमात्मा जो हम लोगों की अपनी सत्ता है, उस परमात्मा से अलग नहीं है। जब तक हम अलग करके अपनी सत्ता को देखते हैं यह है भेद, और जहां भेद हुआ वही अज्ञान हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्यों आते हैं? भेद की निवृत्ति के लिए, अर्थात जो अभेद बोध होना चाहिए वह भेद प्रतिबंधक की वजह से बोध नहीं हो रहा है, और जब तक अभेद का बोध होगा नहीं तब तक आनंद आएगा नहीं। आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि भेद रूपी प्रतिबंधक अभी बरकरार है। इसी भेद की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन शास्त्र श्रवण आदि करते हैं तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में, स्वभाव में दृढ़ता आ जाती है। फिर लगता है कि यत्र ही द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति तद के न कम बिजानी यात। ये सब श्रुति का उदाहरण दे देते हैं। तो सद एव, हे सौम्य, अपने शिष्य को संबोधित करके आचार्य बोलते हैं कि हे सौम्य, जिसका स्वभाव सरल हो, और सोमवार है ना, तो सोम मतलब होता है सौम्य जो बनता है ना, जिसके स्वभाव में शीतलता हो, चंद्रमा की तरह उग्र स्वभाव नहीं है जिसका, उसी के लिए सौम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सुमन से ही बनता है ना, सुंदर है मन जिसका, तो पुष्प का नाम क्यों रखा सुमन? कि फूल को देख करके मन में प्रसन्नता आती है, इसलिए फूल का भी नाम क्या है? सुमन। और सुमन से ही बनता है सौमनस्य, सबके प्रति मन में सुंदर भाव रखना, इसका नाम है सौमनस्य। और जब विपरीत भाव बन जाए, मन बिगड़ जाए, तो हो गया वैमनस्य, हाँ विमन, मन में उल्टा सोचना, उल्टा भाव आना, हाँ तो वैमनस्य होता है, वैर भाव हो गया। और सबके प्रति प्रेम का भाव है तो इसी का नाम पड़ता है सौमनस्य। तो इसी सोम में सुमन आदि बनकर के अलग अलग व्याकरण के हिसाब से बनता है। तो यहां पर सौम्य का मतलब ही है जिसका स्वभाव शांत है, एक तो ये हुआ। जिसको वेदांत सुनाने जा रहे हैं वह अपनी अधिकारिता प्राप्त कर चुका है, साधन चतुष्टय संपन्न होगा, उसी के अंदर ये सौम्यपना झलकता है, दिखाई देता है। इसलिए हे सौम्य, इदम अग्र, इदम मतलब ये जो दृश्यमान जगत है ना, ये कैसा था? तो बोले पहले ये सद रूप में ही था, सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत। अग्र का मतलब पहले, सृष्टि बनने से पहले यह सद रूप में ही था। अपने गुजरात में प्रायः जो पीछे हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अगले साल ऐसा हुआ, संस्कृत में आगामी वर्ष होता है, आने वाले को अगला बोलते हैं, और गुजराती में जो हो जाता है उसको अगला बोलते हैं। कई बार भ्रम हो जाता है, बोले स्वामी जी आप अगले साल भी आए थे? बोले आए थे नहीं, आएंगे, पिछले साल आए थे। तो ऐसा कई बार बोलने में हिंदी में भी होता है। तो यहां अगले का मतलब क्या लेना है? पहले। ये जो जगत अभी दिखाई दे रहा है ये पहले सद रूप में ही था, सद से ही, सद होने के कारण अभी ये व्यक्त हो गया। यदि ये पहले नहीं होता तो अभी भी नहीं होना चाहिए था, अभी है तो इसका मतलब पहले भी था। आसीत संस्कृत में भूतकाल में प्रयोग होता है, लेकिन यहां आसीत का मतलब लेना चाहिए वर्तमान काल में, वही अस्थि बन जाता है, वर्तमान काल में अस्थि और भूतकाल में आसीत और भविष्य काल में भविष्यति, ऐसा बनता है। जो मिट्टी दिख रही है इसमें पहले घड़ा बना था, वही घड़ा अभी बना हुआ है, और ये घड़ा फूट करके मिट्टी ही रह जाएगा। इस प्रकार से कालों का भेद हम लोगों की वजह से होता है, वास्तव में काल तो एक ही होता है। जब हम बीच में खड़े हो जाएं तो आगे हो गया अगला, पीछे हो गया पिछला, और बीच में हो गया वर्तमान, जहां हम खड़े हैं। तो अगला पिछला का विभाजन करने वाला कौन हुआ? मैं ही हुआ। तो वास्तव में देखा जाए तो काल एक ही होता है। तो आसीत जो प्रयोग किया गया है सृष्टि से पूर्व होने के कारण, ऐसा नहीं कि सद था तो अभी नहीं है, जो था वही अभी है और यही आगे होगा, रहेगा। आसीत के द्वारा उस सत्ता का प्रतिपादन किया गया सद रूप में होने के कारण। सद के अंदर तल प्रत्यय लगाओ तो सत्ता, चिद के अंदर तल लगा दो तो चित्ता, इसी को बनते चेतनता, और आनंद में लगाएंगे तो आनंद रूपता, आनंद स्वरूपता, ऐसा व्याकरण के हिसाब से बनता है। तो सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, एक के द्वारा बता दिया था, सजातीय भेद की निवृत्ति जहां हो वहां एक बोला जाता है, जहां सजातीय भेद न रह जाए, सजातीय भेद जहां होगा वहां फिर एक नहीं होगा। और एव से स्वगत भेद की निवृत्ति बता दिया, और अद्वितीयम से विजातीय भेद की निवृत्ति है, यह आप लोग ध्यान रखना। ऐसे तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद तीनों को हम क्रम से बोलते हैं, सजातीय फिर विजातीय फिर स्वगत, लेकिन यहां पर है एक मतलब सजातीय भेद की निवृत्ति, और एव का मतलब स्वगत भेद की निवृत्ति, और अद्वितीयम का मतलब विजातीय भेद की निवृत्ति, लिखा था ना पहले, तो ये ध्यान रखिए। एकम एव अद्वितीयम में सजातीय भेद, स्वगत भेद और विजातीय भेद, और बोलते समय हम लोग बोलते सजातीय विजातीय स्वगत भेद, तो लोग यहां पर भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो एक में सजातीय भेद की निवृत्ति होने पर एक होगा, स्वगत भेद की निवृत्ति होने पर एव रहेगा और विजातीय भेद की निवृत्ति होने पर अद्वितीय रहेगा। तो हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व जो सत था वही सत इस समय जगत रूप में है और सृष्टि के प्रलय होने के बाद, प्रलय भी कैसा है, परिणामवादी तो थोड़ा दूध से दही अलग दिखता है ऐसा मानते हैं, विवर्तवाद में रस्सी में दिखने वाला सांप रस्सी में ही लीन हो जाता है, तो वहां रस्सी में सांप का प्रकट होना, दिखना और फिर लीन हो जाना, ये तीनों अपने आप में हमारे बौद्धिक कल्पना है। वास्तव में वहां सांप नाम की कोई चीज होती नहीं। उसी प्रकार से ये जो जगत था, है, आगे रहेगा, ये केवल हम लोगों की अपने दृष्टि से है। इसी दृष्टि को बदलने के लिए जब वेदांत श्रवण करेंगे तो जगत होने से पहले भी परमात्मा ही था, जगत रूप में भी परमात्मा ही है, और जगत जब नहीं रहेगा तब भी कौन रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। ये समझ में आ गया तो ज्ञान हो जाएगा। इसी के लिए इतने शास्त्र सुन रहे हैं कि ये दृष्टि बन जाए, अभी नहीं हो पा रहा है। जगत से पहले परमात्मा था ये भी हम मान लेते हैं, जगत नहीं रहेगा तो परमात्मा होगा ये भी हम मानते हैं, लेकिन इस समय जो ये जगत है ये भला कैसे परमात्मा हो सकता है, इस जगत को परमात्मा से अलग मानना यही अज्ञान है, जीव को परमात्मा से अलग मानना यही अज्ञान है, ईश्वर को जगत परमात्मा से अलग मानना यही अज्ञान है। जीव जगत और ईश्वर के विचार के द्वारा परमात्मा का बोध होता है। भगवान ने संसार बनाया भटकने के लिए नहीं, संभलने के लिए, और इसलिए अर्जुन को 15वें अध्याय में जब उपदेश देने लगे, बता तो रहे थे पुरुषोत्तम योग, और भगवान ने पहले संसार वृक्ष का वर्णन करना शुरू किया, क्योंकि संसार वृक्ष समझ में आ जाएगा तो परमात्मा का बोध स्वतः हो जाएगा। सीधे ब्रह्म की बात करेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आती बात। जैसे किसी को गेहूं के बारे में समझाना हो तो आपको रोटी आदि से शुरू करना पड़ेगा, जो चीज सामने है, ये रोटी कैसे बनी, आटे से, आटा कैसे बना, गेहूं से, गेहूं कहां से आया, तो एक रोटी के माध्यम से भी ठेठ परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। अपने हाथ के बनी हुई रोटी से भी हम कहां जा सकते हैं, परमात्मा तक। और अपने शरीर के माध्यम से हम लोग चिंतन करते हैं कि हम कहां से आए, कहीं थे, तभी तो अभी यहां हैं, और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब भी हम कहीं न कहीं रहेंगे पक्का। सदैव सोमेदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम् इति उपक्रम्य, यहां से उपक्रम करके, उपक्रम का मतलब होता है प्रारंभ करके, उपक्रम नहीं, उपक्रम्य मतलब प्रारंभ करके, और ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, जब ये जगत बना ये सब के सब आत्मस्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस बात पर जाकर के अपनी बात पूरी की, जहां से सृष्टि चली थी और पूरे जगत को ब्रह्म में ही समापन किया, आत्मा के बारे में ही प्रतिपादन किया, तो ये उपक्रम और उपसंहार जब दोनों की एक वाक्यता होगी तब जाकर के हमें तात्पर्य समझ में आता है। लोग बोलते ना, आप बहुत देर से बोल रहे, अभी तक तात्पर्य समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे। तात्पर्य रहित बोलना बेकार है, व्यर्थ है, इसलिए आचार्य सावधान कर रहे हैं कि श्रवण करना है शास्त्र के माध्यम से, वक्ता बोलेगा और श्रोता सुनेंगे तो वहां उपक्रम और उपसंहार का जरूर ख्याल रखा जाए। दूसरा साधन बता दिया अभ्यास, जो बात शुरू हुई थी उसको बीच बीच में दोहराते रहें, दृष्टांत आदि कई बार याद रह जाते, दृष्टांत की तरफ ध्यान नहीं जाता, इसके लिए जो विषय है प्रतिपादित हो रहा है उसको बार बार याद दिलाए, जिसमें उदाहरण दे रहे हैं कि तत्त्वमसि नवकृत्व तस्य एव अभ्यासो द्वितीयम्। ये दूसरा लिंग है, नवकृत्व नौ बार वहां पर अब बोला है, तत्त्वमसि 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 श्वेत केतु। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता। अपूर्वता तो हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं ना कि इससे पहले हमने नहीं देखा था, अपूर्व हुआ, जो पहले ना हुआ और उसको अपूर्व बोलते हैं हिंदी में। यहां पर अपूर्वता का अर्थ लिया है जिस आत्मा को अन्य प्रमाणों से न जाना जा सके। तो बोले फिर किससे जान सकते हैं, उपनिषद प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से जो न जाना जा सके, यही इसकी अपूर्वता है। आज लगता है यहां कोई है कि नहीं, सब लोग यही है ना, दम समाधि में चले गए तो हां ना करते रहो तो मालूम पड़े। प्रमाणांतरों के द्वारा जो न जाना जाए, अर्थात उपनिषद से भिन्न जो प्रमाण है उसको कहेंगे प्रमाणांतर। प्रमाणांतरों से जो न जाना जाए, यही इसकी अपूर्वता है। अखंडैक रसस्य, जो अखंड और एक रस है, अखंड का मतलब हो गया सजातीय स्वगत और विजातीय भेद से रहित, यही इसकी अखंडता है। और आगे जिन चीजों से ये खंडित सा हो जाता है उसी को भागत्याग लक्षणा के द्वारा, जहद अजहद लक्षणा के द्वारा तत्त्वसी महावाक्य के माध्यम से आचार्य ने स्वयं देवदत्त इस दृष्टांत के माध्यम से तत्त्वसी महावाक्य में किस तरह से अखंडार्थता सिद्ध की है यह आप सुनेंगे। यही इसकी अखंडता है। जिन चीजों से वह खंडित सा लगता है, वास्तव में वह खंडित है नहीं। इसलिए तो एक जगह लिखा है, बपु खंडे खंड प्रतिबसतु शैलेन्द्र दुहितु। भगवती पार्वती ने शंकर जी का आधा अंग ले लिया तो उससे भी वो क्या हो गए, खंडित से लगते हैं। शंकर जी का शरीर पूरा नहीं रहा, अर्धनारीश्वर हो गए। बपुहु खंडे खंड प्रतिबसति शैलेन्द्र दुहितु, शैलराज हिमालय राज की पुत्री। और चंद्रमा भी इस भगवान ने कौन सा द्वितीया की चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा धारण नहीं किया, हाथ में फरसा वो भी टूटा हुआ। महोक्ष खट्वांगम नंदी जो वाहन है वो भी बूढ़े बैल। जो भी उनके पास देखो सामग्री, सबके सब ऐसे लगते हैं बस काम चलाने के लिए है ये सब। लेकिन जो इनके सामने जाता है, जो इनकी भक्ति करता है, उसको अपनी अखंडता का ज्ञान देते हैं। स्वयं तो खंडित वस्तुओं को रखते हैं, दिखते भी हैं खंडित जैसे, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर जब अनुग्रह पूर्वक ज्ञान देते हैं तो उनको क्या ज्ञान देते हैं कि मैं अखंड हूं, मुझे तुम अखंड रूप में जानो। ऐसे अखंड और एक रस, कल भागवत में शाम को बताया था एक रसता क्या है। प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण और अर्थापत्ति अनुपलब्धि इतिहास, ये सब जितने भी प्रमाण हैं, इन प्रमाणों के द्वारा जो न जाना जाए, प्रमाणांतर हो गए उपनिषद प्रमाण से अलग, जो ये सब प्रमाण है इसका नाम हो गया प्रमाणांतर। केवल वह परमात्मा उपनिषद समधिगम्य है, अर्थात उपनिषदों के द्वारा ही वह जानने के योग्य है। इसलिए श्रुतियों में आया तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उस उपनिषद, उपनिषद से संबंधित होने के कारण नाम पड़ा औपनिषद। तम औपनिषदम पुरुषम तू पृच्छामि, मैं उस उपनिषद से उपनिषद के द्वारा जो जानने के योग्य वह परमात्मा उसके बारे में पूछता हूं, हमें उसका उपदेश दीजिए, बताइए। यही उसकी अपूर्वता है, उपनिषद से अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से जो न जाना जा सके। शब्द प्रमाण भी कह देते हैं, वास्तव में हाँ वही आ जाएगा, उपनिषद तो वही है, वास्तव में तो अप्रमेय है। अप्रमेय को भी प्रमेय बना दिया तो मानाधीना मेय सिद्धि, एक पंक्ति है आप लिख सकते हो, मानाधीना मेय सिद्धि, मान में प्र लगा दो तो बन जाएगा प्रमाण, मान मतलब वहां प्रमाण ही है, प्रमाण के अधीन मेय मतलब प्रमेय, मानाधीना मेय सिद्धि, इसको आप कह सकते हैं प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि, प्रमाणों के अधीन प्रमेय की सिद्धि है। जब कहते उपनिषद समधिगम्य है तो उपनिषद के द्वारा जाना तो जाएगा, लेकिन वो होगा परोक्ष ज्ञान, और जब वह स्वसंवेद्य होगा, जो उपनिषद समधिगम्य है वो क्या बनेगा, स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य मतलब खुद के अनुभूति के विषय। इसलिए जो महापुरुष श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, जिनके गुरु हैं, अपने गुरु के मुखारविंद से श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है, फिर उसको सुना करके पढ़ के पढ़ा करके अपने जीवन में अनुभव भी किया है, उसके अनुसार अपने जीवन में बर्ताव भी किया है, उसके द्वारा जब बोला जाता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। वहां वो नहीं कहते कि मैं जो कह रहा हूं वो तुम मानो, बल्कि उनके व्यवहार में, बोलचाल में जो शांत पना, आनंद की अनुभूति जो झलकती है, जो दिखाई देती है, तो लगता है हे भगवान ऐसा दिन मेरा कब आएगा कि मैं भी इस तरह से निश्चिंत पूर्वक जीवन जीऊं। अभी क्या है, हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी मन क्या है, अशांत है, जीवन में आनंद की झलक नहीं है, चेहरे में जो एक स्मित भावना, स्मित भावना उसको बोलते हैं मंद मंद मुस्कान, जोर से हंसना भी नहीं है और मुंह लटकाने की तो बात ही दूर। अब कईयों का चेहरा ऐसा होता है सब कुछ होगा। कल माता जी बोल रही थी शाम के सत्संग में, महाराज ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं टेलीविजन पे, तो उसमें जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वही रोल दिया जाता है। उनका कहना अपनी जगह ठीक था, लेकिन ऐसा कम ही होता होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने वास्तविक जीवन में बड़े दुखी भी होंगे और वहां तो उनको हंसाना पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, कहां टेलीविजन के पर्दे पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि उसका नाम ही है नाटक, नाटक करना है, और नाटक के लिए किसी ने कहा न अटक नाटक, वहां अटको मत, आगे चलते रहो। ऐसे ऐसे लोग पदच्छेद भी कर देते हैं, नाटक न अटक नाटक, और बोले जहां करते हैं नाटक उसका नाम है कर्नाटक। हाँ देखो कर्नाटक की भाषा, कन्नड़, कन्नड़िगा ऐसा होता है। दक्षिण में कि मलयालम जो है ना, केरला की भाषा है, मलयालम के आप स्पेलिंग देखो, दोनों साइड में एक जैसे स्पेलिंग है, इधर से भी वही स्पेलिंग है, उधर से भी वही स्पेलिंग है मलयालम। तो कर्नाटक, केरला को कई बार लोग करेला बोल देते, करेला किधर है, कनाडा कनेडा, उच्चारण में फर्क हो जाता है। तो ये जो हम लोगों को रोल मिला, वो तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण का उदाहरण दिया था ना कल, राम और रावण का जो हो गया था, रावण कितना खूंखार प्राणी है, और रामलीला होने के बाद जो भी हिसाब किताब होता है मंदोदरी को बता रहा होता है, मंच पर जो मंदोदरी रावण से डरती है, वही मंदोदरी बाद में मंच से उतरने के बाद खूंखार हो जाए और रावण को मंदोदरी को हिसाब देना पड़े, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन है तो सच्चाई यही है। राम रावण मंच पर, मंदोदरी रावण मंच पर, मंच से उतरने के बाद वास्तविक जीवन क्या है वो एक अलग चीज है। तो जो ये हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं ये एक अपनी जगह है, लेकिन जीवन में स्मित भावना, आनंद की अनुभूति, शास्त्र को ठीक से जिसने सुना है, मनन किया है, निधिध्यासन किया है, उसके बोलने में एक अलग ही गंध, क्या बोलते हैं ना उसको, वो कुछ दिखाना नहीं पड़ता है, वो दिख जाता है। और हम लोग होते क्या है, जो होते नहीं हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो दिखावा हो जाता है। दिखावा करने की जरूरत, वो हमें दिखना चाहिए आपके अंदर, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता के बाद जो फल है, ये फल इसका क्या है, यही फल है, कह दिया क्या है वो, तस्य तावद एव चिरम यावन न विमुक्षे। वहां पर आता है तद्यथा अहिर निर्लोयनी बलमी के मृता प्रत्यस्ता। जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ने के बाद देखता है तो उसको उससे कोई मोह नहीं होता, छोड़ के चल देता है, उसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद हम भी अपने शरीर को केचुली की तरह छोड़ देते हैं, इसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं है। तस्य तावद एव चिरम, उसके मोक्ष होने में तभी तक, चिरम मतलब विलंबम, तभी तक विलंब है, देरी है, यावत जब तक, क्या न हो जाए मोक्ष। शरीर जीवन मुक्ति का जो शरीर है, विदेह मुक्ति के बीच में जो ये विलंब है, तभी तो वो शरीर वाला दिखाई दे रहा है, वास्तव में जैसे ही विदेह मुक्ति की प्राप्ति हुई तो अब दोबारा उस शरीर में आने वाला नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जाकर के हम परमात्मा से एक हो जाते हैं, ऐसे मुक्त होने के बाद जो ये जीवात्मा था परमात्मा से एक हो गया। जीव के लिए जो बीज, काम, कर्म आदि पुर्यष्टक जो बोलते हैं, वो सब के सब भंग हो गया, नष्ट हो गया। अब वो क्या रहा, वही बोलते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते, यही पूर्ण लीन हो जाते हैं। ये है तात्पर्य निर्णय के द्वारा श्रवण किए हुए वेदांत का जो फल, ये भी एक लिंग है, पहचान है। तो उपक्रमोपसंहार एक हो गया, अभ्यास दो, अपूर्वता तीन, और फल चार हो गए। इति अखंडैक रस ज्ञानस्य, उस अखंड एक रस परमात्मा का ज्ञान हो गया जिसको, प्रारब्ध भोग अनंतरम, प्रारब्ध भोग के बाद, विदेह कैवल्य रूप फल वचनम चतुर्थम। विदेह रूपी जो कैवल्य मोक्ष है, यही इसका फल है, विदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेना, कैवल्य को प्राप्त कर लेना, इसलिए इसका नाम रखा निर्वाण पद। प्रेमपुरी जी महाराज का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं ना हम लोग, तो निर्वाण का मतलब क्या है, य र ल व निर्वाण, और वाण में व और ब दोनों कई बार अभेद अर्थ का होता है, इसे र और ल दोनों का भी एक ही अर्थ हो जाता है कई जगह, तो निर्वाण मतलब निर्वाण, बाण रहित हो जाना। बाण क्या है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी जो बाण था, उस बाण से रहित हो जाना ही निर्वाण है। जो 16 कला वाला था वो अब क्या हो गया, निष्कल, अकल, तद ब्रह्म निष्कलम अहम नच भूत संघ। 16 कलाओं से परे हो जाना, 16 कला पुरुष के बारे में प्रश्नोपनिषद में प्रसंग आता है, तो वहां पर मतलब है सूक्ष्म शरीर से छूटना ही है ये अकल, निष्कलपना, इसी बोलते निर्वाण। जो जो बाण लगा था उस बाण से रहित हो जाना, अर्थात कैवल्य पद, केवलो हम शिव केवलो हम, न शून्यम न चाशून्य मद्वैत कत्वात् चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 10 श्लोकी आप लोग पिछले बार सुने थे, उसमें यह सब आता है। इसी केवल को पहले बता दिया था, ओनली वही है केवल, केवल वन जो रह जाए एकता। तो विदेह कैवल्य रूप फल वचनम चतुर्थम, अर्थवादस्तु पंचमम। अर्थवाद क्या है? जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करना। अर्थवाद में दोनों होता है, गुण को बताना और अवगुण का निषेध करना, निंदा करना, ये अर्थवाद है। इसका अर्थवाद क्या है? अभीष्ट वस्तु की प्रशंसा करने से वह उदाहरण मिलता है, इसकी प्रशंसा क्या हो सकती है? बोले, क्या तू उस चीज को जानता है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? ये इसकी प्रशंसा है। जहां पर श्वेत केतु को पिता ने पूछा ना, बड़ा आया था अकड़ के, तो समझ गए कि इसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है। और यदि मैं सीधे कहूंगा कि तू अभिमानी होके आया तो और अकड़ जाएगा, कोई घमंडी हो ना उसको घमंडी मत बोलो, और चिढ़ जाएगा, मैं तुम्हें घमंडी दिखता हूं। अब वो तो है ही पहले से, और आपने और सुना दिया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया या तुमको अभी ज्ञान नहीं हुआ, चिढ़ जाता। तो बोले कि क्या तुमने वो चीज जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता? तब उसको समझ में आया कि जो जो उसने सीखा था वो तो बताया कि हमने ये सुना ये सुना। तो पिताजी ने कहा, अच्छा पुत्र के मन में क्रोध भी आ सकता है, जो अभी हम ये पूछ रहे हैं कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, फिर इन्होंने हमको वहां क्यों भेजा, स्वयं क्यों नहीं बता दिया? इसका मतलब पिताजी ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी ये ज्ञान हमको भी नहीं है, तभी मैंने तुमको वहां भेजा था, लेकिन फिर भी तो वो सीख के नहीं आया, तो चलो हम दोनों चलते हैं। ऐसा करके वहां एक परंपरा है, देखो कैसे ज्ञान लेने के लिए पिता भी पुत्र का साथ देते हैं। अच्छी चीजों में साथ देवे तो बहुत बढ़िया लगता है। रे तो पिता ने कहा, बेटा ये पीने का जो काम करता है ना तू, बहुत बुरा है, छोड़ दे। पिताजी ने बेटा ने कहा, बस पिताजी एक बार आप पी लो, ये मैं शर्त लगाता हूं, ये छोड़ दूंगा। और पिता ने पिया तो बोलते, बेटा तू छोड़ चाहे मत छोड़ा, मुझसे नहीं छूटेगा। तो ऐसा भी गड़बड़ होता है, तो दूसरे को सुधारने में अपने को बिगाड़ना, ये भी बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाएगी। तो ये जो अर्थवाद है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना, सब कुछ अर्थात सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसको जानने के बाद अज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो जाती है, ये उसकी प्रशंसा है, यही अर्थवाद है। उपपत्ति का सामान्य अर्थ है युक्ति, लक्षण। अर्थात प्रकरण प्रतिपाद्य जो विषय है, आत्मा के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसको प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो युक्तियां दी जाती है, उसी का नाम है उपपत्ति। वो लिखा, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृणमयं विज्ञातं स्यात्। हे सौम्य, एक मिट्टी के पिंड मतलब पात्र को समझकर, एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृणमयं, एक घड़ा जो मिट्टी का बना है तो समस्त घड़ा क्या होगा? मिट्टी का ही होगा। अर्थात वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मिट्टी का एक नाम जो रखा घड़ा, ये वाणी के द्वारा प्रयोग करने के लिए है। यदि वाणी से हमें नहीं बोलना होता तो हमें, क्योंकि वो वाणी का विकार है। वाणी का विकार क्या है? जो मिट्टी के घड़ा हम बोल रहे हैं, वाचारंभणम, वाणी आरंभ कैसे करेंगे? तो मिट्टी के से घड़ा बना, कसोरा बना, दिबोटिया बना, कुल्हड़ बने, अनेक पात्र बन गए, लेकिन जितने भी पात्र हैं सबके सब मृणमयम, मिट्टी से ही युक्त है, मिट्टी के सिवाय वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन बोला नहीं जा सकता ना, मिट्टी में पानी ले आओ, मिट्टी में चाय पी लो, वहां से कुल्हड़ में चाय पी लो, घड़े में पानी भर लो, यही बोला जाएगा। लेकिन तात्विक दृष्टि से आप देखेंगे तो वहां मिट्टी के सिवाय कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ये युक्ति उपपत्ति पूर्वक समझ में आती। बार बार जब हम अपने दिमाग लड़ाते हैं, मनन करते हैं, तब समझ में आता है कि मिट्टी के सिवा यहां और कुछ भी नहीं है। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृणमयं विज्ञातं स्यात् इत्यादि दृष्टांत वचनम उपपत्याख्यम षष्ठम। ये जो उपपत्ति नाम वाला जो छठा लिंग है, ऐसा समझ लेना चाहिए कि जहां ये दृष्टांत मिले कि एक को जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, अपूर्वता प्रमाणांतरों से जो ना जाना जाए, प्रशंसा जिसकी हो अर्थवाद, तो छह चीजों का हमेशा स्मरण रखें। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। शुरू में जब ये सुनते हैं तो बहुत सिर दर्द होता है, लगता है कैसे होता होगा, लेकिन धीरे धीरे बार बार सुनेंगे तो एकदम दिमाग में बात बैठ जाएगी। यही एक वेदांत की विद्वत्ता का लक्षण है, परिचय है। ऐसे तो चलते फिरते कर सकते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, सब ठीक है, लेकिन जब आपको इसके ऊपर एक घंटा दो घंटा बोलना है, कोई ग्रंथ आपको सुनाना है, और यदि ये प्रक्रिया सब हमें मालूम नहीं है तो होता क्या, इतने सारे पढ़ने सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम अंधेरे में ही हाथ मार रहे हैं, ऐसा इसीलिए होता है। तो कुछ बातों को दिमाग में ऐसे बैठा लेवे जिससे आप बैठे बैठे अपने आत्मचिंतन में निमग्न होकर आनंद का अनुभव कर सकते हो, एक प्रक्रिया है। इसलिए सृष्टि प्रक्रिया और लय प्रक्रिया के द्वारा भी परमात्मा की चिंता, पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, अर्थात पृथ्वी लीन हो गई जल में, जल गया तेज में, तेज गया वायु में, वायु का मिलन हो गया आकाश में, ये लय प्रक्रिया से भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और उससे तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूत, वहां से आत्मा से आकाश आदि उत्पन्न हुए, वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि वनस्पति, उसके रस से यहां हम लोगों का जो ये शरीर, ये हो गया सृष्टि प्रक्रिया के माध्यम। तो सृष्टि प्रक्रिया और लय प्रक्रिया दो का तो चिंतन करेंगे तो परमात्मा को जानेंगे, और वो भी करना कठिन लगे तो जो संसार दिखाई दे रहा है ना, किसी का चिंतन करो। हम लोग यहां जितने भी बने हुए हैं, अब गाना गाने वाले ने तो गा दिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान मिलते तो सब यही पूछते उनसे, आपने क्यों बनाए। अच्छा, हम लोगों के हाथ में काम होता तो कोई एक जैसा बनाता है, अपने मनमानी करते। किसी के आदर में नाम नहीं लूंगा, ये कथा करने जाते ना कहीं, तो जैसे कमरा मिल गया कथाकार को, तो कोई कथाकार क्या करेंगे, इधर की अलमारी उधर कर देंगे, तखत को उधर से उधर कर देंगे। अब दूसरे महीने में दूसरे कथाकार आए, बोले ये तखत इधर करो, फिर अलमारी को वहीं वहीं कर देते हैं। तो इधर से उधर, इधर से उधर, इतने तो किया आपने, क्या किया। हम लोगों का जो स्वभाव है ना, अपनी आदत बता रहा हूं, दूसरे के कार्य को पसंद नहीं करना। उदाहरण देते हैं, गर्मी का समय था, वो पेड़ के नीचे लेटा था और खेत में देखा इतने बड़े बड़े तरबूजे लगे हुए, आम के पेड़ में छोटे छोटे आम, तो भगवान को कोसने लगा, क्या है मनमानी किया, इतने पतले से बेल में इतना बड़ा तरबूजा, इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा सा फल, यदि मैं होता तो इसमें तरबूजा लगाता और उसमें आम लगाता। सोचते सोचते उसको झपकी आई और इतने भी एक आम उसके मुंह पे गिरा, उठ के बैठ के बोलता है, जो बनाया वही ठीक है, यही तरबूजा गिरता मेरे ऊपर तो कचूमर बन जाता। तो सृष्टि के तो एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि है। अब अर्थवाद का भी क्या रूप है, ये आपको लघु वासुदेव मननम में एक नई बात मिलेगी, इसका फिर विचार करेंगे कल।